टैक्स रेशो को बढ़ाएंगे, लेकिन वो तमाम मराहत याफ्ता तबके जो टैक्सों से अपने आप को महफूज रखे हुए हैं वो उसी तरह टैक्सों से महफूज रहेंगे। ना ज़राअत पर, ज़राती इनकम पर टैक्स लगाया गया है, ना रियल एस्टेट पर टैक्स लगाया गया है, ना रिटेलर्स पर टैक्स लगाया गया है। मजीद जो टैक्स लगाए गए हैं वो तनख्वाहदार तबके पर, वो जो टैक्स देने पर मजबूर है इसलिए कि उनका टैक्स तो सोर्स पर ही काट दिया जाता है। ये सूरत हाल है।
कुछ उम्मीद तो है?
उम्मीद से देखिए वो मायूसी कुफर है, अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो कुफर के मुतरादिफ है। लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ माजी साहब कि अल्लाह रहमतें नाजिल क्यों करेगा उस सरजमीन पर जहां हर तरह की बेईमानी होती है। वो किसी ने, मैं कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा, वो बड़ी अच्छी खरी बात की उसने, कि वो तमाम गुनाह जिनके लिए, जिनका कुरान में हवाला देकर ये कहा गया है, जिसमें ये इबरत का सामान फराहम करने किया गया है कि हमने उन बस्तियों को हलाक कर दिया जहां ये बुराइयां होती थीं, जहां ये उयूब मौजूद थे, वो तमाम तर बुराइयां, वो तमाम तर उयूब पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान की अशराफिया खास तौर पे गले गले तक करप्शन में मुलव्वस है। और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में झूठ जितना बोला जाता है शायद ही दुनिया का कोई और मुल्क हो जहां इतना झूठ बोला जाता हो। तो खुदा क्यों अपनी रहमतें नाजिल करेगा एक ऐसी बस्ती पर जहां एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक सिर्फ गुनाह हो रहे हैं, गुनाहों का इर्तकाब हो रहा है, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है, और जहां दीन की बेहुरमती हो रही है। देखिए दीन के नाम पर बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है, अपने जाती कजिए निमटाने के लिए दीन की बेइज्जती का, दीन की बेहुरमती का नारा लगाया जाता है। तो दीन के शायर का, दीन का के जो 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 मनासिक हैं उनकी सबसे ज्यादा बेहुरमती जहां होती है वो पाकिस्तान में हो रही है। तो अल्लाह क्यों ऐसी अपनी रहमतें नाजिल करेगा?
मगर आपने जो कहा, लेकिन मैं बिलीव करता हूं,
लेकिन फिर भी वो खुद अपनी किताब में कह रहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो हम मायूस नहीं होते, लेकिन हकायक से पर्दापोशी भी हम नहीं कर सकते। तो हमें तो माजिद साहब ईमान की बात है कि मुझे तो उस तारीख सुरंग में के किनारे पर रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती, फिलहाल तो कोई नजर नहीं आती।
फिर आप ही की बात रिपीट करूंगा, ना उम्मीदी कुफर है।
तो उम्मीद यही रखनी चाहिए कि खुदा इन उयूब से पर्दापोशी करते हुए शायद पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं।
एज ए मुल्क, एज ए कौम, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज करप्ट। बहुत इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं सर, करामतुल्लाह गौरी साहब, बे इंतहा मशहूर हूं आपका, और कि आप यहां तशरीफ लाए, एंड अगले ट्यूजडे को इंशाल्लाह ताला ये नहीं होगा जो आज
मंगलवार
मंगलवार होगा। किस पे वार होगा ये तो गौरी साहब खुद बताएंगे अगले ट्यूजडे को। गौरी साहब बेहतर शुक्रिया सर आपका,
बहुत बहुत शुक्रिया।
कुछ स्पॉन्सर्स के पैगामात लेते हैं, उसके फौरी बाद शाजेद आ जाएंगे, फिर हम मिलके यहां पर आपके लिए खबरें पेश करेंगे, पूरी दुनिया की सैर करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दी नशियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहन दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।
ਸਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋਡੀ अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अलहुदा इंस्टीट्यूट कनाडा पेश करते हैं वेस्टर्न कनाडा टूर 2024 विद डॉक्टर फरत हाशमी एंड डॉक्टर इदरीस जुबैर। ये टूर 29th ऑफ जून सैटरडे के दिन कैलगरी से शुरू होगा और 14 जुलाई संडे के दिन सरे वैंकूवर पर खत्म होगा। इस टूर की मुकम्मल मालूमात के लिए कॉल 6473884595।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक ल्यू थ्रू आउट ओंटारियो, नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यू 519-622-0660 quicktruckcube.com।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241
क्या आप या आपकी फैमिली डेथ, डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस जैसी नागहानी सूरत हाल के लिए तैयार है? अगर नहीं तो सन लाइफ की प्रदीप जी का नाम याद रखिएगा 4168945872।
जी हाँ, सलाह मशवरे और किसी भी पॉलिसी के रिव्यू में मैं प्रदीप सिंह आपकी पूरी मदद करूँ।
ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर एंड कैनेडियन हेल्थ स्पेशलिस्ट मिस्टर प्रदीप फ्रॉम सन लाइफ 4168945872।
और हर ट्यूजडे को मेरे टॉक शो में जरूर शामिल हो।
आयशा, ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो?
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए।
10 जगह क्यों? एक ही जगह है, फातिमा ग्रोसर्स।
फातिमा ग्रोसर्स?
जी हाँ, फातिमा ग्रोसर्स। मसाले, ताज़ा सब्जियाँ, फल, हलाल गोश्त, मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी। ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी। मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड, वेस्ट ऑफ मिसिसागा, 9058487000। फातिमा ग्रोसर्स, सबसे जबरदस्त।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में बे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663। विलेज टेस्ट। कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा, 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है, लाइफ क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 9056075000 9056075000।
अजीत सुनते हो?
अब कह भी दो।
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ।
मगर कब?
अब कुछ कहना मैना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर।
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट।
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792।
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक।
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
जी समय नाजरीन, वेलकम बैक अगेन एंड साहब 6:10:50 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और ट्यूसडे का दिन है, जुलाई की 22 कह दें आप, 22 डिग्री टेम्परेचर, ब्यूटिफुल गॉर्जियस टेम्परेचर। अगले 2-3 दिन भी आपको बड़े खतरनाक किस्म के टेम्परेचर में, कल तो थोड़ा बारिश है मगर इसके अलावा फिर 29, 26, 27, 28 हाई 20s में हम होंगे, नॉट मिड 20s बट हाई 20s में हम होंगे। एंड लेट्स एंजॉय इट मैन, लेट्स एंजॉय इट। 2 दिन या कितने दिन हो गए, 4 दिन तो हो गए गर्मियों के शुरू हुए, तो बस गिनते रहिए आप, काउंट डाउन। साहब लिए चलते हैं अब आपको न्यूज की जाने पर, न्यूज somebody has to sponsor it and a good people from Pyle Jewelers, असलम भाई वो कहते हैं साहब आपको अगर सोने की ज्वेलरी चाहिए हो, आपको टर्किश ज्वेलरी चाहिए हो, आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान या और अरबी मालिक की चाहिए हो तो आप पहुंच जाइए कहां पर, पायल ज्वेलर्स पर 2720 नॉर्थ पार्क ड्राइव, नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट के कॉर्नर पर इन ब्रैम्पटन में आपको मिलेगा पायल ज्वेलर्स। 9057907879 इनका फोन नंबर है। ओपन माइक कैफे आपको मिलता है 1310 डंडास स्ट्रीट, डंडास एंड डिक्सी के कॉर्नर पर ओपन माइक कैफे। पाकिस्तान के लजीज खाने हो तो पहुंच जाइए आप, 416-526-6800 इनका फोन नंबर है। डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, डॉक्टर नाजिया रहमान यहां पर होती हैं, फैमिली ब्रेसिस कॉस्मेटिक इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू होम। डॉक्टर साहब का कहना है कि न्यू एंड इमरजेंसी पेशेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, कॉम्प्रीहेंसिव डेंटल केयर, मॉर्निंग इवनिंग वीकेंड्स एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शंस। आपको आपके भी बच्चों में के दांतों में कोई खराबी है तो साहब डॉक्टर नाजिया रहमान के पास पहुंच जाइए, 9058721100 इनका फोन नंबर है। चलिए साहब, दिल तो नहीं जा रहा है मगर क्या किया जाए, एक सैड सॉन्ग लगा दूं पहले वेरी सैड सॉन्ग, वो ओपनिंग होगी शाजिया मलिक की ना शाजिया मलिक जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी
हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
हाँ जी
हैं जी
जी जी,
तन की हाल है आजकल थोड़ा?
मैं तो
तभी नजर ही नहीं आ रही हूँ आजकल,
मैं आसमान पे होता हूँ ना, आप देख रही थी
हाँ
हाइट की तरीके से
नहीं उतने मुंह करके देखो
हाँ, मैं अच्छा अच्छा आजकल आसमान पे हूँ
अच्छा अच्छा, मैं आपके लिए आया मुझे लग रहा है,
बसेरा वहाँ पर कर दिया,
बसेरा वहाँ है ना, तो वो मुझे लगता है आप ही के लिए आया वो गाना, किसी को समझ नहीं आनी मेरी हीर आसमानी मुझे लगता है आपको देख के वो गाना बनाया उन्होंने इंडियन
में। आजकल तो मेरा गाना है चल उड़ जा रे पंछी के ये देश हुआ बेगाना।
बस मजे तक कराची जाके हूं तुम बस जाओ फिर
छोड़ो चारे पंछी के अब ये देश हुआ
पराया
गाना। ओ बेगाना पराया कि तुम क्यों आ गया।
अच्छा बेगाना हो गया।
हाँ जी
यानी आप इसको भी प्रदेश समझ रहे हैं। आपने अभी तक इसको देश नहीं समझा। अभी भी आप कह रहे हैं कराची में जाके मैंने बसना है। वैसे मेरा भी अपना जाति ख्याल है कि ये प्रदेश है और हमें वापस जाके बसना चाहिए। यहाँ देश में जाना है।
चलो
देश में जाना ठीक है। अच्छा आप कितना का
दार चलो
चांद के पार चलो
पाकिस्तान चलो
पाकिस्तान तो पाकिस्तान चांद ही है ना। मजे भाई ना पानी है ना तो चांद ही है ना। ये पाकिस्तान इस जमीन पे चांद है।
यूएस
इस जमीन पे जो एक चांद है ना वो पाकिस्तान है सिर्फ।
हाँ हाँ चंदा मामा है।
हाँ बिल्कुल
अपने चंदा मामा है।
बिल्कुल बिल्कुल। ओ मतलब है पानी है कि नहीं है बिजली है कि नहीं है। खुश सबसे ज्यादा लोग पाकिस्तान में ही है ना।
बहुत बात
बहुत
आई रेस्ट माई केस।
हाँ बस जर्नैल जालिम है फलाना जालिम है बोलने नहीं दे रहा। लोग किधर खुश है ये बताओ। पाकिस्तान पूरे एशिया में सबसे ज्यादा खुश लोग
पूरी दुनिया में
पाकिस्तान में लोग खुश
हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुश लोग
उसी के लिए सियाणों ने किया है। अकल ना होवे ते मौज ही मौज।
यार मेरा ख्याल आप ना
चलो कड़ियां आपको सुना लेते हैं। अपने दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं ना।
हाँ जी
हाँ कमजोर भी हुए हुए हैं।
लेटेस्ट
हाँ लेटेस्ट तो ऐसी खबरें बताते हैं आपके कि आपका खून भी और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाए।
अच्छा बिल्कुल शुरू हो
जाए। अब्बा शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोज़ लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट। फैसल चट्ठा साहब हैं। बस पहुंच जाओ तुसी एक दफा इन उन्हां दे कोल फिर देखो उन्हां दियां पुर्तियां किस तरह के खाने खिलाते हैं तुहानू। है जी तो इनके दो रेस्टोरेंट हैं। एक है 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा पे। इसका नंबर है 9052323663। एक है जी ओकविल में 2294 लेक शोर रोड वेस्ट। इसका नंबर है 9052262294। बड़े मजे के जो हैं वो खाने हैं तो एंजॉय का मजा लें। अच्छा जनाब इसके अलावा चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल 1400 प्लस टाई बंदा इधर आप बुला सकते हैं। बिल्कुल अगर आपको अपना फैमिली या के कोई भी कॉरपोरेट का इवेंट करना है तो बड़ा जबरदस्त खूबसूरत किस्म के इनके लग्जरी होटल जो है उसमें 32 रूम्स हैं। तो बस जी आप इनसे संपर्क करें। दे आर लोकेटेड एट 2935 ड्रीव रोड मिसिसागा। इनका नंबर है 6479653823। और जनाब अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए अगर आपको 12,000 से 60,000 के चाहिए और अगर आपका एक बच्चा अंडर 12 है जो कि मैं हूं इसीलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। माजिद भाई आप भी कर लो।
हाँ
मैंने अप्लाई कर दिया आप भी कर लें। और अगर आपके पेरेंट्स की जो तनख्वाह है वो 60,000 से कम है तो आप प्लीज इसके लिए करें। इसके लिए और डिटेल्स के लिए आप शावेज खान को कॉल कर सकते हैं @ 6477690241। ठीक है जी। अच्छा जनाब हुण असीं तुहानू सुनाने हैं जी कहानियां। कहानियां ये हैं कि जो ट्रूडो साहब हैं उनसे लोग जो हैं बड़े निराश हो गए हैं और एक बैक बेंचर जो है एमपीएल जो है लिबरल पार्टी का उसने अब ट्रूडो साहब को कहा है पायान जान छोड़ो उन साड़ी है। देखो कितना खराब आदमी है।
बैक को बैक बेंचर से पीछे से
हाँ पीछे से आवाज दी है उसने। पीछे से दिया
पीछे से निकाल दो।
हाँ पीछे से निकाल दो उसको पतली गली से यानी के। तो वो कहते हैं जी ये ट्रोनो सेट पॉल के बाय इलेक्शन में जो आपका डिफीट आया ये सीट हम जो है होल्ड कर रहे थे 1993 से तो आप मुझे नहीं लगता कि आपको अब अपनी इस कुर्सी के ऊपर रहना चाहिए। अच्छा इनका नाम है एमपी का वेन लॉन्ग और ये जो है न्यू ब्रंसविक की। हाँ वेरी लॉन्ग। हाँ जी मेरे से लंबे हैं भरम। न्यू ब्रंसविक की एक जो राइडिंग है उसको ये करते हैं और वो कहते हैं जी कि वोटर्स ने अपना बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज आपको दिया है। और लॉन्ग साहब खुद भी जो है एमपी हैं सिंस 2015 लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब मैं री इलेक्शन सीक नहीं करा पाए क्योंकि उन्होंने पता कि उड़ीसा लिबरल पार्टी ने हारने थे। इज्जत इसी बीच के
टिकट नहीं मिलेगा।
हाँ टिकट भी नहीं मिलेगा
आफ्टर दिस कमेंट।
हाँ बिल्कुल। न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर के जो एमपी हैं केन मैकडॉनल्ड उन्होंने भी कुछ इसी तरह का कहा है हमारे ट्रूडो साहब को। उन्होंने कहा जी कि जो है ये जो आपने ईमेल भेजी है बिल्कुल ठीक किया है बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। कैथरीन मैकेना फॉर्मर एनवायरमेंट मिनिस्टर फ्रॉम 2015 से 2019 जो लिबरल पार्टी में रही थी अंडर ट्रूडो साहब उन्होंने भी कहा जी कि ये लिबरल पार्टी जो है इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन इट स्टैंड्स फॉर इट्स वैल्यूज एंड द इम्प्रूवमेंट दैट वी ब्रिंग इन द लाइव्स ऑफ कनेडियंस। सो एज अ रिजल्ट जो है आपकी बड़ी लेगेसी है ट्रूडो साहब को उन्होंने कहा है तो आप अपना ये जो लेगेसी है इसको खराब मत करो आप नए लोगों को आगे आने दो। दे विल ब्रिंग न्यू आइडियाज न्यू एनर्जी एंड न्यू लीडर। इसी तरह फॉर्मर बीसी के जो लिबरल प्रीमियर हैं क्रिस्टी क्लार्क, उन्होंने भी यही कहा है। उन्होंने कहा जी कि आप जो है अब पुल बैक करें, और मुझे हैरत है कि आपकी, वैसे लोग कहते हैं बड़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, लेकिन आप तो उन वोटर्स को भी मोटिवेट नहीं कर सक रहे हो जो कि हमेशा से सोचते थे कि हम लिबरल पार्टी के लिए वोट करेंगे। तो ये मल्टीपल जो लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, ये कॉन्स्टेंटली ट्रूडो साहब को कह रहे हैं कि आप रिजाइन करो। नेक्स्ट इलेक्शंस जो हैं वो अक्टूबर 20, 2025 को होंगे, तो उससे पहले वो जो है कहते हैं कि कोई नया लीडर आ जाए, लेकिन हूं नवा लीडर थे हूं कौन आएगा इन्हें दे कोई नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, ये जो कनेडा डे हम कल मना रहे थे उसमें टेस्ट ऑफ एशिया फेस्टिवल जो चल रहा था मार्कम में, उसमें अचानक जी ट्रूडो साहब हमारे पहुंच गए और वो नाचा गाया खाने खाए, सही एंजॉय का मजा किया इन्होंने, हैं जी बहुत मजे किए, नाचे भी वहां पे। अच्छा जी, अब जब ये डांस कर रहे थे तो लोगों ने वो जो अपने इंस्टाग्राम पे रील्स बना बना के डाली, फिर अपने जो है फेसबुक पे डाली और जगह पे डाली, तो उन्होंने जी ये ट्रूडो साहब ने भी कहा कि आई केम फॉर टंगलुलू है जी आई स्टेड फॉर द पार्टी, और वहां पे फिर अपने इन्होंने जो फेवरेट श्रिम्स हैं और क्रैब है वो खाया, और इसी तरह लास्ट मंथ भी इन्होंने सरप्राइज किया था एक टर्किश जॉइंट जो है उसमें जो उनका जो ओनर है मुस्तफा उसके पास पहुंच गए और उससे कुछ गपियां की। इससे पहले जो थे वो किंग वेस्ट हॉटस्पॉट पे रुके थे और वहां पे चबीज जमैकन जो है उसके ऊपर उन्होंने ओनर के साथ हो गए, तो मतलब ये साढ़े को इम्प्रेस हो गए पाकिस्तानियों को, कह रहे हैं खाओ पियो मौज करो मौजा मनाओ मौजा करो, बहुत प्राइम मिनिस्ट्री में कर ली बात सुन हूं मैं मौजा करनी है, तो बस पाकिस्तानियों की तरह खाओ पियो खुश रहो। तो बस जनाब ये खाया पिया और लोगों ने बड़ी इनकी तस्वीरें जी ट्रूडो साहब की डाली। सबवे सर्विस जो थी लाइन वन यंग एंड यूनिवर्सिटी लाइन जो थी उसके ऊपर आज कुछ न्यूज आई थी कि वहां पे आग लग गई है। इसकी जो न्यूज थी वो सुबह 10:40 पे आई थी इन एट लॉरेंस एवेन्यू वेस्ट एंड एलन रोड के ऊपर, और फिर यहां पे जो फायर क्रू था वो पहुंचा था और उसने फायर को फौरन ही बुझा दिया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये जो लाइन है ये बंद रही, सर्विस जो थी वो सस्पेंडेड रही, और उसके बाद जो है फिर इन्होंने शटल बसेज वहां पर मंगवाई ताकि अगर कोई लोग वहां से जाना चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन पे तो वो जाएं, और फिर उसके बाद जो है यहां पर जिस वक्त ये आग वाग बुझा ली गई तो फिर रेगुलर सर्विस हुई, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है कि ये कॉज ऑफ फायर जो था यहां पे क्या था। ग्रीस ने तो जनाब बड़ा ही अजीम काम किया है, ग्रीस ने 6 डे वर्क वीक कर दिया है, बाकी सारी यूरोप जो है वो कह रही है हमको 4 डेज कर रहा है, ग्रीस कह रहा है नहीं नहीं साढ़े कम नहीं चल रहे 6 डे, तो 6 डे वर्क वीक इन्होंने कर दिया है, और उन्होंने कहा है जी कि ये जो है हमारे बिजनेस इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा होंगे। 1 जुलाई यानी कि कल से इन्होंने ये एनफोर्स किया था। आज प्राइम मिनिस्टर जो है इनके ग्रीस के क्रिकॉस मिट्सोकैटिस, उन्होंने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि ये जो हमारा ट्रेडिशनल 40 आवर का वर्क वीक था, इसका मतलब है कि अब ये 48 आवर का वर्क वीक होगा जिसमें कि 2 घंटे पर डे बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका के फायदा ये होगा कि जिन लोगों को जो सोच रहे थे कि उनको प्रॉपरली कॉम्पेंसेट नहीं किया जा रहा उनको प्रॉपरली कॉम्पेंसेट भी किया जाएगा, इसके अलावा जो लेबर की शॉर्टेज है उससे भी निपटा जाएगा और ये ग्रोथ लेकर आएगी, और ये बड़ा जो है वर्कर फ्रेंडली ये मेजर है, यानी कि वर्कर फ्रेंडली इस तरह है कि लोगों को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये अब इन्होंने कहा जी, लेकिन ये हर किसी पे लागू नहीं होता है, जो भी बिजनेसेस ये करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, जो इनके लेबर लॉज थे ये इन्होंने लास्ट ईयर कहा था कि हम इनके अंदर कुछ चेंजेस लाएंगे, तो उसी सिलसिले की आज ये यहां पे बातचीत कर रहे थे। एएफपी की जनाब आज एक रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक जो इसराइल है उसने लेबनान के अंदर जी अब स्ट्राइक्स जो है वो शुरू कर दिए हैं, जिसकी की वजह से एक सिविलियन जो है उसकी डेथ हुई है। पिछले 9 महीने से जब से गाजा की वॉर शुरू हुई और इसराइल हिजबुल्ला के बीच में ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है वो मुस्तकिल होती रहती है सिंस अक्टूबर 7। बुस्तान के जो मेयर हैं अदनान अहमद, उन्होंने कहा जी कि इस स्ट्राइक के अंदर एक फार्मर महीउद्दीन अबूदल्लाह जो है उसकी डेथ हुई है, 50s में था वो, और उसका घर भी डैमेज हुआ और उसकी एग्रीकल्चर मशीनरी जो है वो भी हुई है। एक्स के ऊपर बात करते हुए लेबनान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्बास अल हज हसन जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये लेबनीज फार्मर जो था ये जो ऑक्यूपेशन है इसराइल की इसके सामने खड़ा रहा, अपनी वो लैंड जो है इनको देने को तैयार नहीं था और उसने अपनी जान दे दी लेकिन अपनी जमीन से वो नहीं हटा। अभी तक जो ये पिछले 9 महीनों में दोनों के बीच में वायलेंस हो रही है उसके अंदर 493 लेबनीज जो हैं उनकी डेथ्स हुई हैं, और ये ज्यादातर जो थे, ये फाइटर्स थे, लेकिन इसके अंदर 95 सिविलियंस भी हैं और इसराइल की साइड पे 15 लोगों की डेथ हुई थी। ये एक बड़ी ही चौंका देने वाली अभी खबर आई है और आपको पता ही है कि सारी दुनिया कंडेम कर रही है, इंक्लूडिंग अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि भाई इसराइल को आर्म्स मत दो क्योंकि ये जो गाजा के ऊपर इतना वो जुल्म कर रहे हैं उसको रोकें। तो आप ये देखो जरा कि ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर जो है, एक्सपोर्टर जो है इसराइल को, वो उसके कनेक्शंस यूएई के साथ मिलते हैं। अच्छा जी, कैसे? सर्बिया की जो स्टेट ओन्ड वेपन्स मैन्युफैक्चरर है जिसने के कहा है कि जी हमारी डील्स यूएई के साथ भी हैं, उन्होंने वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स जो हैं वो इसराइल को बेचे हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स इन 2024 सर्बिया की जो मेन ये स्टेट ओन्ड आर्म्स ट्रेडर था योगिम पोर्ट SDPR, इसने 17.1 मिलियन डॉलर्स के आर्म्स जो है इसराइल को दिए हैं थ्रू इसराइली मिलिट्री एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट्स। और वो कहते हैं जी कि ये मेन सप्लायर था कोल्ड वॉर में योगोस्लाविया का भी। अब इसके जो है वैसे तो बड़े क्लोज टाइज हैं रशिया के साथ भी, लेकर इसने यूक्रेन को भी 858 मिलियन यूएस डॉलर के आर्म्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स। 2021 में इसने जो थे जो आर्म्स एक्सपोर्ट किए थे 1.2 बिलियन के डिफरेंट कंट्रीज को। और इसका रिलेशनशिप यूएई से ऐसे है कि सर्बिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो बिल्कुल कलैप्स के उसके ऊपर एज पे खड़ा हुआ था जब इसने यूएई को 2013 में यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 2013 में रीच आउट किया और उनको कहा जी कि तुम हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो, जिसकी के वजह से यूएई जो है ना सिर्फ यूएई ने बल्कि सऊदी अरेबिया और कतर ने भी ये सर्बिया के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट्स की। जो सर्बिया के जो लीडर्स थे उनकी मुलाकातें यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान उनके साथ हुई थी और फिर उन्होंने जो यूएई से लोन लिया था उसके बदले में फिर इन्होंने यूएई को आर्म्स भी दिए 214 मिलियन यूएस डॉलर्स के। इसके अलावा यूएई ने जो एयर सर्बिया है उसके अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट्स की और ये जो सारी इन्वेस्टमेंट्स यूएई सऊदी अरेबिया और कतर ने की हैं सर्बियन टूरिज्म में खास तौर पे, वो तमाम की तमाम लिंक्ड हैं जैरेड कचनर के साथ। आपको पता ही है कि जैरेड कचनर कौन है, ट्रंप साहब का सन इन लॉ है, उनका दामाद है यानी कि जो इनका ट्रंप साहब का। तो ये सारे के सारे जो मुस्लिम मेन कंट्रीज हैं ये तीन यूएई सऊदी कतर, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी ये बड़ा जुल्म हो रहा है गाजा के अंदर और दूसरी तरफ ये जो सबसे बड़ा आर्म्स डीलर है सर्बिया का उसके साथ ये डील कर रहे हैं और उससे आर्म्स भी ले रहे हैं। तो ये आज बड़ा जो है जी अफसोस का इसका इसमें कुछ लोगों ने जिक्र किया है। टर्किश अथॉरिटीज जो है उन्होंने डिटेन किए हैं तकरीबन 470 एंटी सीरियन जो राइड्स हो रहे थे उस सिलसिले में लोगों को, और ये राइट्स उस वक्त शुरू हुए थे जब एक सीरियन आदमी के बारे में कहा गया कि उसने एक छोटे बच्चे को हरास किया था। इंटीरियर मिनिस्टर जो है अली यरलिकिया, उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है कि ये जो वायलेंस थी ये सेंट्रल अनातोलिया से स्टार्ट हुई थी आफ्टर ये जो सीरियन बंदा है इसको एक्यूज किया गया कि इसने एक छोटे बच्चे को हरास किया है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को देखा गया कि अनातोलिया के अंदर सीरियन बिजनेसेस और प्रॉपर्टीज जो हैं खासतौर पे इन केसरी के एरिया में वहां पे इनको जो है तोड़फोड़ वहां पे की गई, एक जो ग्रोसरी स्टोर था सीरियंस का उसको आग लगाई गई और उन्होंने कहा जी कि हमको सीरियंस की या फॉरनर्स की इस मुल्क में जरूरत नहीं है, इनको निकालो यहां से। प्रेसिडेंट एर्दोगान जो है उन्होंने ऑपोजिशन को जो है इसके ऊपर जो है टारगेट किया, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ये टेंशन जो है और ये वायलेंस जो है अगेंस्ट सीरियंस ये भड़का रही है जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। पुलिस जो है उसको बहरहाल बीफ अप किया गया है, सीरियन काउंसलेट जो है इस्तांबुल में उसके आसपास और उस सारे एरिया के अंदर इस वक्त अब आर्मर्ड ट्रक जो है वो पेट्रोल कर रहे हैं और जो है ये स्थिति जिसको कहा जाता है गंभीर है यहां पे। तो बहरहाल तुर्की की जो गवर्नमेंट है इसको संभालने की कोशिश कर रही है। ये एक और खबर है जी जो कि बहुत ज्यादा तशवीश आप कह सकते हैं का बायस है और उसकी वजह यह है कि यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज जो यूरोप के अंदर हैं उनके लिए एक अलर्ट आया है कि उनको शायद टेररिस्ट अटैक्स आ सकते हैं। ये जो मगर ये पॉसिबल टेररिस्ट अटैक्स है अकॉर्डिंग टू यूएस यूरोपियन कमांड हेडक्वार्टर, यहाँ पे जो इनके बंदे हैं, जो पर्सनल हैं, उनको जर्मनी में, रोमानिया में, बल्गेरिया और इटली में कहा गया है कि चार्ली इज इन इफेक्ट। यानी कि चार्ली क्या है, ये आपको पता ही है कि ये थ्रेट लेवल्स होते हैं जिसके के अंदर वो कहते हैं अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। तो ये जो है चार्ली लेवल का थ्रेट है, जिसके का मतलब ये है कि ये जो इंसिडेंट्स जो होने वाले हैं, कोई उसकी इंटेलिजेंस इनके पास आई है कि जिसमें पता चलाया जा सकता है कि कोई टेररिस्ट एक्शन हो सकता है यूएस फैसिलिटीज या उनके पर्सनल के अगेंस्ट। तो यूएस ईयू कॉम जो है उसने एडवाइज किया है अपने पर्सनल को यूरोप के अंदर कि आप विजिलेंट रहें और अलर्ट रहें, क्योंकि यूएस मिलिट्री सर्विस मेंबर्स और स्टाफर्स के ऊपर जो है अटैक्स आ सकते हैं। इसमें जो इनके ज्यादातर हेडक्वार्टर्स हैं वो स्टटगार्ट में भी हैं, जर्मनी में, और इन्होंने जो अपने हेडक्वार्टर्स हैं मिलिट्री के वीजबेडन जर्मनी में, और नेवल फोर्सेस नेपल्स इटली के अंदर, और रीमस्टीन एयर बेस जो है जर्मनी में, उन सबको अलर्ट किया है कि आप बिल्कुल ध्यान रखें, आपके ऊपर शायद पॉसिबल टेररिस्ट अटैक्स आ सकते हैं। तो अब आपको पता ही है कि जर्मनी में जो है वो तो गेम्स हो रही हैं और फिर पेरिस के अंदर भी आने वाली हैं, तो अब ये काफी जो है जरा थोड़ा धड़का लगा हुआ है जिसको आप कह सकते हैं इन लोगों को। और जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी। डॉक्टर फियाज कुरैशी के भी तीन क्लिनिक्स हैं और बड़ी जबरदस्त डेंटल सर्विसेज देते हैं। दो इनके क्लिनिक्स जो है मिसेस सागा में है, तो अगर आपको उनसे कोई भी सर्विस चाहिए मिसेस सागा में तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 9052325678, या कि स्कार्ब्रो में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उनको कॉल कर सकते हैं 8416757999। एंड जनाब राजा ते बादशाह जी बड़ी जबरदस्त आपको राइट किस्म की इंश्योरेंस देते हैं फॉर होम एंड ऑटो, जो कवरेज आपको चाहिए होती है, सिलसिले में आप उनको कॉल कर सकते हैं इन ऑल स्टेट। इनका नंबर है 6472903773। एंड जनाब हमारे सुल्तान भाई, सुल्तान भाई जो हैं वो होते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे, तो 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट पे वो होते हैं। अगर आपको बड़े खूबसूरत शैम्पेन कलर के और मार्केट से कम प्राइस में चाहिए हैं अप्लायंसेस, तो आप हमारे सुल्तान भाई को कॉल करें एट 9054502222। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर आज जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम नजीर तारर साहब, उन्होंने आज यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है उसका बड़ा बुरा मनाया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की जो डिटेंशन है वो बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है। इस पर बात करते हुए लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर ने कहा है कि इमरान खान की डिटेंशन जो है पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, इमरान खान साहब को तमाम राइट्स दिए गए हैं अंडर द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो इमरान खान साहब हैं वो कन्विक्टेड प्रिजनर हैं, तो लिहाजा उनको प्रिजन में ही रखा जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारे जो इनको जो केसेस इनके ऊपर थे उनमें इनको रिलीफ मिली है, जो कि मैनिफेस्टेशन है इस चीज का कि हमारी कोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट और फेयर ट्रायल्स चलाती हैं और हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे तमाम लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और जो कि हमारी पाकिस्तानी कोर्ट्स जो हैं फॉलो करती हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये आपकी जो रिपोर्ट आई है ये इंतहाई डिस्क्रिमिनेटरी, बायस्ड और अगेंस्ट जस्टिस है। जिनीवा बेस्ड यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन, इन्होंने कहा था कि इमीडिएटली खान साहब को रिलीज किया जाए और उनको जो है कॉम्पेंसेशन भी दी जाए और रेपरेशंस भी उनको जो है दिए जाएं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि आपने उनको रिप्रेस किया है और उनकी पार्टी को भी, और आपके जो लीगल सिस्टम है वो ठीक नहीं है। इसके साथ साथ जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने भी पाकिस्तान को कहा है कि लोगों का जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनको आपको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। ये बात कर रहे थे इन द बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए थे फरवरी 8 में, जिसमें कि पीटीआई ने स्वीप किया था और फिर उनको गवर्नमेंट बनाने नहीं दी गई थी ऑन वन थिंग और द अदर। वेदांत पाटिल प्रिंसिपल डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि यूएस कंसिस्टेंटली प्राइवेटली और पब्लिकली भी कॉन्स्टेंटली अर्ज कर रहा है पाकिस्तान को कि राइट ऑफ द पीपल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो है पाकिस्तान की उसको रिस्पेक्ट करें और जो लोगों का फैसला था वो उन आप इम्प्लीमेंट मुल्क के अंदर करें, आप जो है उसके अलावा कोई काम ना करें। तो अब ये चीज जो है जोर पकड़ती जा रही है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि एक रेजोल्यूशन भी आई है यूएस कांग्रेस में जिसको कि पास किया गया है जिसमें कि कहा गया है कि इमरान खान साहब को छोड़ें और बाकी के भी जो उनके लोग हैं उनको छोड़ें और इनको जो है जो इलेक्शंस हुए थे जो मुल्क का वर्डिक्ट था यानी कि पाकिस्तानियों का उसके ऊपर आप चलें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दुशंबे पहुंचे हुए हैं दो दिन के विजिट के ऊपर ताजिकिस्तान के अंदर और आज उन्होंने वहां पर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं जिसमें से कि एक अनाउंसमेंट ये है कि अब आपको ताजिक जो लोग हैं उनको पाकिस्तान आने के लिए और पाकिस्तानियों को ताजिकिस्तान जाने के लिए वीजा का जरूरत नहीं पड़ेगी। ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अमामोली रामोन उन्होंने इनको होस्ट किया था कसरे मिल्लत ताजिक के अंदर जो कि प्रेसिडेंशियल पैलेस है और यहां पे आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमामोली साहब के बीच में बहुत सारे एमओयू साइन किए गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिसंबर में हो रही थी उसमें बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा जी कि हम काम करना चाहते हैं ट्रेड एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन इन्वेस्टमेंट के ऊपर और हम ये डिजायर शो करते हैं कि हमारे दोनों मुल्कों के बीच में एक रेल और रोड नेटवर्क होना चाहिए और एक ट्रेड कॉरिडोर होना चाहिए जो कि हमारे मुल्क से चले चाइना ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान को फिर वो जोड़े। अभी इस वक्त जो गुड्स हैं हम कराची पोर्ट से ताजिकिस्तान में भेजते हैं वाया अफगानिस्तान लेकिन अगर ये डायरेक्ट रोड और रेल रहेगी तो उसमें ज्यादा आसानी होगी। उन्होंने कहा जी दोनों ही मुल्क टेररिज्म जो है उसको फेस कर रहे हैं और पाकिस्तान ने टेररिज्म के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। हमने 2017 में बिल्कुल अपरूट कर दिया था टेररिज्म को लेकिन अब ये फिर वापस जो है वो वापस आता जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि इस इलाके में पीस बहुत जरूरी है क्योंकि पीस के बगैर हमारी प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती है और उन्होंने होप किया कि कासा 1000 प्रोजेक्ट जो कि एक बड़ा एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था उन्होंने कहा जी कि ये अब कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक जिससे कि बहुत सारी एनर्जी की जो नीड्स हैं वो भी पूरी होंगी। तो काफी अच्छा जो है इनका ये इस वक्त विजिट चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा क्रूशल टॉक्स जो है वो चल रही हैं दोहा के अंदर आफ्टर मंथ्स और ये इनकी फेस टू फेस जो है वो मीटिंग है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहां पे इनकी मुलाकात जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर टू कतर उनके घर पे हुई थी और जो पाकिस्तान के स्पेशल एनवॉय ऑन अफगानिस्तान हैं एम्बेसडर आसिफ दुरानी और चीफ जो हैं तालिबान के स्पोक्स पर्सन जबीउल्ला मुजाहिद इन दोनों की जो डेलीगेशंस हैं जिनको लीड कर रहे थे उनके बीच में बातचीत हुई है जिसमें कि इनको डिनर पे बुलाया गया था और इनको मुजाहिद साहब को बताया गया कि भई आपकी जमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए और रीजनल इश्यूज जो हैं हमको बैठ के तय करने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जी जो टीटीपी है उसके हाइड आउट्स हैं बहुत सारे अफगानिस्तान में जिनको कि डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने ट्राई किया इनको कन्विंस करने के लिए अफगानिस्तान को कि आप भी टीटीपी से छुटकारा लें और उसके एफिलिएट्स जो हैं उससे भी और डिप्लोमेटिक तरीके से जो है तमाम मामलात को रिजॉल्व करें लड़ाई झगड़े से ये मामलात नहीं चलेंगे। तो कहा तो यही जा रहा है कि जी बड़ी अच्छी मीटिंग रही लेकिन होता यही है पाकिस्तान से जब वो अफगानिस्तान या दोहा से पाकिस्तान या अफगानिस्तान जाते हैं उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। सामने जब बैठे होते हैं तब तो बड़ी लवी डवी बातें कर रहे होते हैं पता नहीं क्या होता है। शायद मुझे लगता है पाकिस्तान अफगानिस्तान की हवा पानी सूट नहीं इनको करते दोहा की बहुत सूट करती है दोहा में बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते हैं फिर जाते हैं फिर लड़ाई हो जाती है ऐसे। अच्छा जनाब फवाद चौधरी साहब ने थोड़े दिन पहले जो है बड़ा बॉम्ब फोड़ा और उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रेजेंट पीटीआई की लीडरशिप है ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है और ये इमरान खान साहब को जो है ये बिल्कुल निकाल नहीं सकती और ये बड़ी खराब है। इसके ऊपर अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो तो बड़े भड़क गए उन्होंने कहा भाईजान आप तो इमरान खान साहब को उस वक्त छोड़ के भाग गए थे जब सबसे ज्यादा उसके साथ खड़े रहने की जरूरत थी एटलीस्ट हमारी लीडरशिप बुरी भी है तो हम इमरान खान के साथ खड़े तो हुए हैं। और पीटीआई की असल में कोर कमेटी की एक यूनैनिमस रेजोल्यूशन आई थी जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये जितने डिफेक्टर्स हैं लाइक फवाद चौधरी टाइप्स इनको अब वापस पार्टी में वेलकम नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि मुझे तो लग रहा था कि ये एक हाथी की तरह जो है भाग रहा था जिस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पुलिस इसको पकड़ने के लिए आ गई थी और ये जो है ये तो भाग गया था सारी मुश्किलों से हम तो मुश्किलों में भी खान के साथ जो है वो खड़े रहे हैं और हमें तो शर्मिंदगी हुई थी तुम्हारी वजह से पीटीआई को तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा अपनी शर्मिंदगी में सर झुकाना पड़ा था जो कुछ तुमने और तुम्हारे जैसों ने किया था यानी कि वही जो बैक टू बैक जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके छोड़ रहे थे पीटीआई को। तो जो है वो फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा था जी कि ये लीडरशिप जो है ये शाह महमूद कुरैशी परवेज इलाही और असद कैसर के हाथ में देनी चाहिए क्योंकि ये बाकी के लीडर जो है फुल स्टॉक करते हैं। तो जाहिर है कि फिर अब शेर अफजल मरवत जो है वो तो मड़ा नहीं बर्दाश्त करेगा ये क्या बात कर रहे हैं वो तो पठान है फिर उसने बोला कि मड़ा तुम अपना बात अपना जेब में रखो, हमको अपना पार्टी खुद रन करने दो, ठीक है। तो ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा जनाब, पीटीआई जो है एक बड़ी मेजर रैली इस्लामाबाद में करने जा रही है जुलाई 6 को। इसके खुलासे जो हैं वो किए हैं पीटीआई के लीडर अली मोहम्मद खान ने। उन्होंने मीडिया को बताया है आज इमरान खान के साथ मुलाकात करने के बाद अडयाला जेल में, और उन्होंने कहा जी कि ये जो रैली हम निकाल रहे हैं ये फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ के लिए है, और हम जो है फाइट करना चाहते हैं जो भी कोई अपने आप को लॉ से अबव समझता है या पावरफुल समझता है उसके अगेंस्ट है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद ये मेरी इमरान खान साहब से पहली मीटिंग है, और कोई भी एक भी ऐसा नेशनल जो स्टेचर का लीडर नहीं है और वो इतनी हार्श कंडीशंस में रहता है, मेरा तो दिल रोता है उसको देख के, क्योंकि उसने करप्ट सिस्टम और माफिया के खिलाफ जो है आवाज उठाई है। तो मैं सारे पाकिस्तानियों को कहता हूं, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखते हैं, कि प्लीज आप आओ और इस रैली का हिस्सा बनो। इन द पास्ट 340 डेज उन्होंने कहा जी कि टेम्परेचर्स 40 to 45 degrees तक को टच कर रहे हैं और उसको बहुत बुरे हालत में रखा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि PMLN, PPP, JUI, जमात इस्लामी किसके पास इस तरह का लीडर है। तो पायन वैसे ये तो बात ठीक है, झुका नहीं है वो आदमी। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी वो मिलिट्री दतरले कर रहे हैं, लेकिन पायन रखा हुआ तो उसको जेल में ही है ना, इतनी मुश्किलों में रह रहा है। तो ये जनाब अली मोहम्मद खान ने ये बात की। मगर क्या बात है भाई, मैं तो ये कुछ लोग जो है पीटीआई के उनको बड़ा मैं एडमायर करती हूं, वाकई जो खान के साथ खड़े हुए हैं, डरे नहीं है, झुके नहीं है, बड़ी बात है पाया नहीं है तो। वैसे अच्छा जनाब, प्री अरेस्ट बेल ऑफ बुशरा बीबी जो है उसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने अप्रूव किया है इन 190 million pounds रेफरेंस। 2-member इस्लामाबाद हाईकोर्ट बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस आमिर फारूक एंड जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने ये जो थी अप्रूव की थी इनकी। और इससे पहले जो है उन्होंने मई में खान साहब की भी ये जो बेल प्ली थी ये अप्रूव की थी। इमरान खान और बुशरा बीबी और दूसरे जो पीटीआई के लीडर्स हैं वो नैब की ये इंक्वायरी जो है फेस कर रहे हैं फॉर द सेटलमेंट बिटवीन पीटीआई गवर्नमेंट एंड मलिक रियाज इन द अलेज्ड लॉस ऑफ 190 million pounds। वो जो लैंड का सिलसिला था सारा, उस सिलसिले में आज की जो हियरिंग हुई उसमें नैब ने 3 और विटनेसेस को प्रेजेंट किया जिनको के क्रॉस एग्जामिन किया गया डिफेंस लॉयर्स ने। और इसके अलावा अभी तक इस केस में 30 विटनेसेस जो हैं वो सामने लाई जा सकी हैं, 27 को इसमें से क्रॉस एग्जामिन किया गया था। नैब ने कोर्ट को बताया कि बुशरा बीबी के अरेस्ट के वारंट्स अभी तक इशू नहीं किए गए हैं, और कोर्ट ने फिर काजी के और कितनी अब आपकी विटनेसेस रह गए हैं तो आप उनको नेक्स्ट हियरिंग पे लेके आओ, और नेक्स्ट हियरिंग जो है वो अब जुलाई 5 को होगी इस सिलसिले में। तो ये है आज जो चीफ जस्टिस जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने आज ईसीपी की काफी क्लास ली। उन्होंने कहा जी आपने मिस इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को, यानी कि उन्होंने बताने की कोशिश की है पायान तुहानू समझ नहीं आई, तुसी इंतहाई नलायक हो है। उन्होंने ये बताने की कोशिश किया, उन्होंने कहा जी आप जो बार बार कह रहे हो कि जी ये इनको रिजर्व सीट नहीं दी जा सकती, इनको रिजर्व सीट्स नहीं दी जा सकती पीटीआई वालों को, क्योंकि ये सुन्नी इत्तेहाद तहरीक काउंसिल से लड़े हैं, तो उनमें इसका क्या कसूर है? आपने पीटीआई का जो सिंबल था बल्ला वो आपने उसको ले लिया, और आपने कहा जी कि उसका जो इंटर पार्टी जो इलेक्शन था वो वैलिड नहीं था, उसको फिर आपने पोल्स नहीं लड़ने दिए गए, तो जो कोर्ट है उसके लिए जो वैलिडेशन दी थी वो उसके लिए आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन उसकी दी है ईसीपी ने, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल ही इंटरप्रिटेशन देना चाहिए था, लेकिन हमारी चीज को उन्होंने गलत समझा। हमने कहा था कि आप सबूत सामने लेकर आओ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, तो आपने उसको मरोड़ तरोड़ दिया। तो आप अब क्या चाहते हैं कि वही जो नजरिया जरूरत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो था हम फिर से उसके तहत जो है फैसले करें, आप ये चाहते हैं? ये रिमार्क्स उन्होंने उस वक्त दिए जब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 13-member बेंच जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की प्ली सुन रहा था, विच इज अगेंस्ट पिशावर हाई कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ अपहोल्डिंग ईसीपी डिसीजन ऑफ डिनाइंग देम रिजर्व सीट्स। इसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान जो है उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अंडर आर्टिकल 51 कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अतर मिलन ने कहा जी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसका राइट है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि वो जिसको चाहे जो है वो उसके साथ जुड़ सकती है। लोग जो थे जिन्होंने जिनको उन्होंने वोट दिया था लेकिन ईसीपी ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको ही इलेक्शंस में से यानी कि वोट्स उसमें से पोल्स में से एक्सक्लूड कर दिया था। तो इसमें कसूर अदालत का नहीं आपका है क्योंकि आपने तमाम की तमाम चीज जो है मिस इंटरप्रेट की सुप्रीम कोर्ट की। तो आज काफी खींचने की जरूरत भी है जो है इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थे मतलब इस तरह फिर रहे हैं ना कि जिस तरह मतलब ये सारा पाकिस्तान साड़ी वजह के नाल चल रहे हैं जी जिस तरह माजिद भाई और आमिर समझते हैं कि जी मेरे नाल कुछ भी है बुराई करके दे कैन गेट अवे विद दिस नो ईसीपी कांट गेट अवे उसी तरह माजिद भाई थे आमिर भी दे कांट गेट अवे ठीक है जी ऐसे ही है। अच्छा जी जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने आज यूनानिमसली नॉमिनेट किया है जस्टिस आलिया नीलम को एज फर्स्ट एवर वुमन टॉप जज फॉर लाहौर हाईकोर्ट। अब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इसके सिलसिले में बातें हैं कि जी ओ इसको तो जो है बड़ा फेवर दिया गया है। नहीं फेवर कोई नहीं दिया गया है। शी वॉज नॉमिनेटेड बाय जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी के मीटिंग हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा। शी वॉज थर्ड इन सीनियोरिटी लिस्ट ऑफ लाहौर हाईकोर्ट थर्ड इन लिस्ट ऑफ। अब तो आप कहेंगे जी बाकी दो का क्या हुआ। हाँ जी अब हम आपको बताते हैं बाकी दो का क्या हुआ। जो बाकी दो जो थे लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन उनको प्रमोट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। एज अ रिजल्ट लाहौर हाईकोर्ट को हेड करने वाला कोई नहीं था एंड बिकॉज शी वॉज थर्ड इन लाइन तो इसलिए इनको अब कहा गया है कि ये लाहौर हाईकोर्ट को हेड करेंगी एज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाईकोर्ट। तो कोई इनको सुपीरियोरिटी जो थी इनकी ये नहीं थी कि नहीं थी तो इनको सुपरसीड किया गया। नो इनसे ऊपर तो जो दो जजेस थे जैसे कि मैंने आपको बताया मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन उन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में शिफ्ट किया गया है। एज अ रिजल्ट लाहौर हाईकोर्ट में ये चूंकि थर्ड इन लाइन थी इन सीनियोरिटी तो इसलिए इनको जो है वो पोजीशन अब दी गई है। जस्टिस इसी तरह जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी जो हैं उनको भी यूनानिमसली नॉमिनेट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ सिंध हाईकोर्ट्स टॉप पोजीशन। आलिया जो हैं उनकी वो पैदा हुई थी 12 नवंबर 1966 में और इन्होंने एलएलबी की डिग्री ली थी पंजाब यूनिवर्सिटी से 1995 और उसके अगले साल इन्होंने अपने आप को एज अ लॉयर एनरोल किया था। तो कोई इसके अंदर जो है वो झोल झाल नजर नहीं आ रहा जो कि सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं बहुत उछाला जा रहा है जिसको और कुछ लोग जो है हमारे मर्द हजरात पाकिस्तान में बहुत उसको जो है वो कर रहे हैं ओ ये तो शी डिजर्व नहीं करती थी। बिल्कुल डिजर्व करती थी ये ठीक है जी। अच्छा जनाब पुलिस इन गुलबहार कॉलोनी जिसको के क्रांची के रहने वाले जानते हैं गोलीमार का जाता है जिस इलाके को है जी गोलीमार का जो इलाका है वहां पे जनाब एक बड़ा टेक सेवी है जी गैंग पकड़ लिया गया है। टेक्नोलॉजी में इनका दिमाग बहुत चल रहा था लड़कों का। अच्छा जी टेक्नोलॉजी में दिमाग कैसे चल रहा था इनका ये बड़ा स्पेशलाइज करते थे। ये क्या करते थे मोटर गाड़ियां चोरी करते थे और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करते थे। बिल्कुल कनाडा वाली स्टोरी है जी सर्विस कनाडा विच वाली और उसको फिर ऑनलाइन ये सारी की सारी जो है सेल करते थे। एसएसपी सेंट्रल जीशान सिद्दीकी जो है उन्होंने बताया जी कि ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड थ्री स्टेज ऑपरेशन चला रहे थे और ये मोटरसाइकिलें चोरी करके इसको इलीगली बेच के इलीगल पैसा कमा रहे थे। ये करते क्या थे कि ये इसके जेन्युइन पेपर्स जो थे वो एक्वायर करते थे और फिर उनको फोर्ज करते थे और फिर इनका टेम्पर करते थे इंजन और चेसिस नंबर यानी कि जैसे यहां पे वो गाड़ियों का विन नंबर चेंज किया जाता है एग्जैक्टली वैसे टेम्पर करते थे ये सारा कुछ और फिर इसको बिल्कुल जेन्युइन दिखा के ऑनलाइन सेल करते थे। तो टेक्नोलॉजी में ये बड़े तेज थे। जब लोग ऑनलाइन जाके देखते थे तो उनको कोई भी झोल झाल नजर नहीं आता था। उनको लगता था ये जेन्युइन मोटरसाइकिलें हैं पेपर भी जेन्युइन है वो जब खरीदते थे। लेकिन जब बहुत ज्यादा चोरियां शुरू हो गई डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कराची से मोटरसाइकिलों की तो फिर जब पुलिस पीछे लगी तो फिर वो इन तक पहुंची। इनमें से जो तीन मेन मेंबर्स हैं उनका नाम है बिलाल एक का नाम है शाहरुख और एक है रिजवान। यानी देखो जरा ना शाहरुख है और कम देखो जरा है देखकर वो कहते हैं जी टेक्नोलॉजी में इनका दिमाग बहुत चलता है। वाह जी वाह क्या बात है क्या बात है। आज हिंदुस्तान के अंदर बड़ा एक अफसोस का वाकया यूपी के इलाके में हुआ है। वहां पे एक रिलीजियस गैदरिंग हो रही थी जिसमें कि फिर स्टैम्पीड हो गया। उस स्टैम्पीड के अंदर 116 पीपल वर क्रश टू डेथ अंडर द फीट ऑफ पीपल और हजारों ही इसके अंदर जो है वो जख्मी हुए हैं क्योंकि एक छोटा सा एग्जिट था जिसमें से लोगों को निकलने की कोशिश करे और जब वो नहीं निकले तो वो दूसरी तरफ से उन्हें जाने की कोशिश की, जिस तरह एग्जैक्टली जैसे मीना में होता है, एक जगह है ऊपर जाने के लिए और दूसरा रास्ता है बाहर निकलने के लिए, है जी, कंकरियां मार के, लेकिन लोग दोनों रास्तों से ऊपर जाते हैं फिर वहां पर स्टैम्पीड होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही था। और ये जो चैत्रा डिविजनल कमिश्नर है यहां पे, चैत्रा साहिबा जो हैं डिविजनल कमिश्नर ऑफ अलीगढ़ यूपी के अंदर हैं, वो कहती हैं जी कि हम लोगों को मेडिकल एड और वो दे रहे हैं, रिलीफ दे रहे हैं। अभी तक 27 बॉडीज जो हैं वहां से निकाली जा चुकी हैं और मेडिकल स्टाफ को दी हैं। ये जो सारे का सारा रिलीजियस ये जो चल रहा था गेट टुगेदर, ये हथरस के एरिया में चल रहा था, 140 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ जो इनका कैपिटल है न्यू दिल्ली, उससे है। यहां पे बेतहाशा क्राउड जो था वो जमा हुआ हुआ था टू सेलिब्रेट हिंदू डीटी शिवा। और सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस आ रहे हैं वो पता चल रहे हैं कि जी बॉडीज पे बॉडीज पाइल अप की हुई हैं, क्योंकि वो सारे जो क्रश होते जा रहे थे उनको फेंका साइड पे जा रहा था। यानी कैन यू इमेजिन इंसान की जो वहशत है कि कोई सेंसिटिविटी नहीं है उसके अंदर। यूपी जो है वैसे भी हिंदुस्तान का मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, और कैन यू इमेजिन कि यूपी की जो पॉपुलेशन है कितनी होगी माजिद भाई, कैन यू इमेजिन 200 मिलियन, एक स्टेट जो है उसकी पॉपुलेशन 200 मिलियन है तो जो है। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अब कहा जी कि ये इन्वेस्टिगेशन खोलो कि ये हुआ क्या है असल में, ऐसे है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है अमृतिया सेन ने, हिंदुस्तान के अंदर प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, एक्स मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में ये इन्होंने काम किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आपको पता ही है, और नोबेल प्राइज इन्होंने विन किया है इकोनॉमिक्स का। और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है करण थापर साहब को, आपको पता ही है कि सीनियर एडिटर है द वायर के उनको, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जो इस वक्त हिंदुस्तान का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, इसमें उन्होंने मोदी जी का जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब था उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया है, और ये जो मुसलमानों के बारे में हर वक्त बातें खिलाफ करते रहते हैं, मोदी जी को हिंदुस्तान के 200 मिलियन जो मुसलमान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए, जो जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल करते हैं। और वो कहते हैं जी कि ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, और एज अ सिटीजन्स ऑफ इंडिया ये मोदी जी को यानी अपने प्राइम मिनिस्टर को पूछ सकते हैं कि आप हमारा इंसल्ट क्यों करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मैं तो मुसलमान नहीं हूं, मैं तो हिंदू हूं, लेकिन मैं भी इंसल्टेड फील करता हूं कि एक इतने बड़े सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर इस तरह की भद्दी जबान जो है वो इस्तेमाल करता है। और मैं मुझे अगर उस इस मुल्क का, इस इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री का लीडर इस तरह से सोचता है तो दिस मीन्स देयर इज समथिंग डीपली रॉन्ग इन हिज थिंकिंग। उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन सब रहते हैं, और एज अ रिजल्ट वो सब के सब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सवाल उठा सकते हैं। तो अगर इन्होंने अभी तक मोदी जी ने मुसलमानों को सॉरी नहीं बोला है तो उनको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो मुसलमानों को सॉरी क्यों बोलना पड़ेगा, बैकग्राउंड क्या, हम आपको बता रहे थे इलेक्शन के दिनों में मोदी जी कॉन्स्टेंटली कह रहे थे और झूठा एक नैरेटिव जो है वो ड्राइव कर रहे थे। वो कह रहे थे जी ये जो कांग्रेस वाले हैं इनको वोट मत दो क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज और तुम्हारी ज्वेलरी और तुम्हारी चीजें जो है लेके उनको दे देंगे जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, यहां तक कि वो तुम्हारी औरतों के मंगलसूत्र, आपको पता ही है जब इंडियन औरतों की शादियां होती है तो उसको मंगलसूत्र पहनाया जाता है ये बताने के लिए कि वो मैरिड औरत है। वो कहने लगे जो बड़ा सीक्रेट होता है एक हिंदू औरत के लिए, वो कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र तक ये हिंदुस्तान, ये कांग्रेस वाले लेके और मुसलमानों को दे देंगे और तुम्हारे लिए यहां पे जिंदगी का तंग कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये अगर मुसलमानों के लिए वोट बैंक के लिए मुजरा करना चाहते हैं तो फिर इनको करने दो। आपको याद है मैंने सारी आपको बताई, उसके ऊपर जो है अमृतिया सेन साहब जो है आज बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो लीडर है उसकी इतनी गंदी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब ये चीजें यहां तक नहीं रुकी, हुआ ये कि राज्यसभा के अंदर आज जो है फिर फायरवर्क्स देखेंगे। राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप डांडकर, उन्होंने आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मलिक अर्जुन खड़गे, अब आपने इसको मिक्स नहीं करना, राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन मलिक अर्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं वो हैं, और लोकसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राहुल गांधी है। सो दिस इज राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर आज मलिक अर्जुन खड़गे ने कहा जी कि ये जो तुम अपने लीडर को बहुत ज्यादा आइडलाइज करते हो, ये इस तरह की गंदी लैंग्वेज, और पूरे का पूरा ये जो मैंने भी आपको नैरेटिव बताया ये पूरे का पूरा उसने बोलना शुरू कर दिया। तो उसके ऊपर जो जगदीश डांडकर जो कि चेयरमैन थे राज्यसभा के, उन्होंने कहा आप कैसी लैंग्वेज बोल रहे हो मलिक अर्जुन खड़गे साहब, ये इंतहाई अनलाइक लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, साहब ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये आपका लीडर जिसको आप बड़ा आइडलाइज करते हैं मोदी जी, ये उनका लैंग्वेज है, ये मेरा लैंग्वेज नहीं है। तो उसके ऊपर चेयरमैन साहब ने कहा कि भरल आपके ये जो लैंग्वेज है ये इसको हम रिकॉर्ड पे नहीं रख रहे हैं राज्यसभा में। तो बहुत अब बड़े अरसे के बाद 10 साल के बाद अब स्ट्रांग अपोजिशन आई है ना, तो अब इनको हेडेक्स मिल रहे हैं, वरना 10 साल से तो खामोश बेचारे सारे बैठे हुए थे, क्योंकि बीजेपी की बड़ी जो थी वो थी ना मेजोरिटी में, बड़ा टैका था। तो इस तरह से अच्छा जनाब, जो बेचारा सलमान खान है उसकी तो जान ही नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन आज नवी मुंबई की जो पुलिस है उसने बहुत बड़ा काम किया है। उसने जनाब एक चार्जशीट लेकर आए हैं 5 अक्यूज के खिलाफ, जिसके में लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो शामिल है। और ये बड़े दिनों से पुलिस जो है नवी मुंबई की ये कर रही थी, इसके अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही थी कि सलमान खान के घर के बाहर जो ये फायरिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले वो किसने की थी। तो उसमें फिर ये जो उन्होंने ट्रेस किया और ये 5 लोगों को पकड़ा, उसके अंदर आज उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इसको मर्डर नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसके अंदर और बहुत सी चीजें इन्वॉल्व थी। इसके अंदर 2 लोगों ने जिन्होंने आके इसके घर के बाहर जो कि बांड्रा के अंदर है उसमें जो की थी फायरिंग की थी, ये पूरे का पूरा एक प्लान था। ये गैंग जो था लॉरेंस बिश्नोई, इसने कुछ लोगों को हायर किया था और उन्होंने कहा था कि हम 25-25 लाख रुपया तुम्हें देंगे अगर तुम सलमान खान को मारोगे। और ये जो पूरी हैच की जा रही थी ये कॉन्स्पिरेसी, ये अगस्त 2023 से ये प्लानिंग जारी थी और अप्रैल 2024 तक चलती रही। इसके लिए एडवांस्ड फायर आर्म्स जैसे कि AK-47, AK-92 और M-16 राइफल्स और टर्किश मेड ज़ियागना पिस्टल्स जो हैं वो तक लाई गई थी। और ये ज़ियागना पिस्टल वही है जिसको कि यूज किया गया था पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को मारने के लिए May 29, 2022 में। तो वही वेपन्स वही प्लानिंग की जा रही थी सलमान खान को भी मारने के लिए। और 2 लोगों को इस चीज पर लगाया हुआ था कि सलमान खान की एक एक मूवमेंट जो है उसमें तुम्हारी नजर होनी चाहिए, इसका जो घर है मुंबई में उसमें से कब निकलता है, कब आता जाता है, इसका जो पनवेल में फार्म हाउस है उसमें कब आता जाता है, यहां तक कि गुड़गांव का जो फिल्म सिटी है उसमें शूटिंग के लिए कब आता है। और वो कहते हैं जी कि इस पूरे प्लान में उन्होंने 18 साल और उससे कम उम्र के लड़के जो थे रिक्रूट किए थे और कहा था 25-25 लाख रुपया तुम्हें मिलेगा। और ये सारे का सारा प्लान यहां से कनाडा से चलाया जा रहा था और ये जो इसमें लोग इन्वॉल्व थे वो गोल्डी ब्रार और अनमोल बिश्नोई, इसका लॉरेंस बिश्नोई का भाई जो है वो यहां से ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे कनाडा से। ये पाया ने क्या आपू नहीं है आपू से डरने का तो ये जनाब बड़ी ही खतरे में नाक आज खुलासे किए हैं नवी मुंबई की पुलिस ने। शाहरुख खान साहब जो है जी उनको बहुत ही प्रेस्टीजियस जो है अवार्ड दिया जाएगा एट लकार्नो फिल्म फेस्टिवल और इस अवार्ड का नाम है पार्दो एला करिए। अगस्त 10 को इनको दिया जाएगा इन ओपन एयर वेन्यू इन पियाजा ग्रांडे। और इनकी जो फिल्म देवदास है जिसको के बनाया था संजय लीला भंसाली ने, वो भी इस मौके पे दिखाई जाएगी। आर्टिस्टिक डायरेक्टर जो है फेस्टिवल के जियोना नजारो, उन्होंने कहा जी कि टू वेलकम अ लिविंग लेजेंड लाइक शाहरुख खान इज अ ड्रीम कम ट्रू, ही ब्रिंग्स द वेल्थ एंड ब्रेथ ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमाज हियर विच इज एब्सोल्यूटली अनप्रेसिडेंटेड, ही इज द ट्रू किंग and he's a very daring artist who is always willing to challenge himself and he remains true to his craft and plays the role that his fans expect from his films. He's a true hero and a down to earth person and a true legend. To isliye hum ji isko kar rahe hain, inaam de rahe hain, hai ji. Nawazuddin Siddiqui kis kis ko pasand hai zara classroom mein jitne bacche hain haath khada kare hain. नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपको पता ही है जो आमिर कहता है टावरिंग पर्सनैलिटी है बॉलीवुड की, लेकिन बेचारा कहता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि मुझे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा मेरे लुक्स के लिए क्योंकि मैं अगली हूं, मुझे नहीं समझ आता कि लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते थे। हाँ, मैं भी फील करता हूँ जब मैं अपने आप को खुद को शीशे में देखता हूँ तो मैं अगली ही हूँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि इतना अगर बदशक्ल है कोई आदमी तो वो फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आया। मुझे लगता है कि मैं अगलीएस्ट एक्टर हूँ फिजिकली इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन मैं कोई कंप्लेंट्स नहीं कर रहा हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे जो अपॉर्चुनिटीज अपने करियर में दी गई हैं, लेकिन मुझे अगली कहा जाते थे। वैट इज दिस। अच्छा, कोई अच्छी खबर सुनाने या फिर तनु रोन वाली खबर सुनावा। ठीक है जी, पाकिस्तान के अवेश मुनीर जो हैं जनाब, उन्होंने विन किया है एशियन सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप रियाद के अंदर, और उन्होंने हांगकांग के नैनसन वॉन को डिफीट किया है 6-3 से। उन्होंने विक्ट्री ली, पहले ये मैच टाई हो गया था 2-2 से, लेकिन फिर मुनीर ने 3 स्ट्रेट सेट्स जीत के लीड किया इस टीम को, इस गेम को 5-2 से। इससे पहले उन्होंने डिफीट किया था अपने ही पाकिस्तानी को असजद इकबाल को 5-2 से इन सेमीफाइनल्स में यस्टरडे, और उससे भी पहले पाकिस्तान के जो मोहम्मद हसनैन हैं उन्होंने अपने ही पाकिस्तानी को एहसन रमदान को हराया था एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में 4-3 से। रजवान जो था वो हालांकि डिफेंडिंग चैंपियन था आफ्टर विनिंग ट्रॉफी इन ईरान।